ये साप्ताहिक बाइबल का उपदेश प्लेनफील्ड क्रिश्चियन साइंस चर्च इंडिपेंडेंट से है, जो प्लेनफील्ड न्यू जर्सी अमेरिका में है। अधिक जानकारी के लिए कृपया हमारी वेबसाइट पर जाएं www.plainfieldcs.com। आपके ध्यान के लिए ये पाठ रविवार 26 नवंबर 2023 के लिए है। विषय: प्राचीन और आधुनिक काला जादू, उपनाम कृत्रिम निद्रावस्था और सामोहन। स्वर्णपथ: इफ्सियों। इसलिए परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम बुरे दिन में सामना कर सको और सब कुछ पूरा करके स्थिर रह सको। उत्तरदायी ध्यान: भजन संहिता। मनुष्य की गति यहोवा की ओर से दृढ़ होती है और उसके चलन से वो प्रसन्न रहता है। चाहे वो गिरे तो भी पड़ा न रहेगा, क्योंकि यहोवा उसका हाथ थामे रहता है। मैं लड़कपन से लेकर बुढ़ापे तक देखता आया हूँ, परंतु ना तो कभी धार्मिक को त्यागा हुआ और ना उसके वंश को टुकड़े मांगते देखा है। वो तो दिन भर अनुग्रह कर कर के रन देता है और उसके वंश पर आशीष फैलती रहती है। मैंने दुष्ट को बड़ा पराक्रमी और ऐसे फैलते हुए देखा जैसा कोई हरा पेड़ अपने निज भूमि में फैलता है, परंतु जब कोई उधर से गया तो देखा कि वो है ही नहीं, और मैंने भी उसे ढूंढा परंतु कहीं नहीं पाया। खरे मनुष्य पर दृष्टि कर और धार्मी को देख, क्योंकि मेल से रहने वाले पुरुष का अंतफल अच्छा है। पाठ उपदेश बाइबल में से निर्गमन। तब परमेश्वर ने ये सब वचन कहे कि मैं तेरा परमेश्वर यहोवा हूँ, जो तुझे दासत्व के घर अर्थात मिस्र देश से निकाल लाया है। तू मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। लेविय व्यवस्था। तुम अपने लिए मूर्ति ना बनाना और ना कोई खोदी हुई मूर्ति या लाट अपने लिए खड़ी करना। तू मेरे विश्राम दिनों का पालन करना और मेरे पवित्र स्थान का भय मानना। मैं यहोवा हूँ। यदि तुम मेरी विधियों पर चलो और मेरी आज्ञाओं को मानकर उनका पालन करो, तो मैं तुम्हारे लिए समय समय पर मी बरसाऊंगा, तथा भूमि अपनी उपज उपजाएगी और मैदान के वृक्ष अपने अपने फल दिया करेंगे, यहाँ तक कि तुम दाख तोड़ने के समय भी दवानी करते रहोगे और बोने के समय भी भरपेट दाख तोड़ते रहोगे, और तुम मनमानी रोटी खाया करोगे और अपने देश में निश्चिंत बसे रहोगे, और मैं तुम्हारे देश में सुख चैन दूंगा, और तुम सोओगे और तुम्हारा कोई डराने वाला ना होगा, और मैं उस देश में दुष्ट जंतुओं को ना रहने दूंगा, और तलवार तुम्हारे देश में ना चलेगी, और तुम अपने शत्रुओं को मार भगा दोगे और वो तुम्हारी तलवार से मारे जाएंगे, और तुम में से 5 मनुष्य 100 को और 100 मनुष्य 10,000 को खदेड़ेंगे, और तुम्हारे शत्रु तलवार से तुम्हारे आगे आगे मारे जाएंगे, और मैं तुम्हारी ओर कृपा दृष्टि रखूंगा और तुमको फलवंत करूंगा और बढ़ाऊंगा, और तुम्हारे संग अपनी वचा को पूर्ण करूंगा, और मैं तुम्हारे मध्य चला फिरा करूंगा और तुम्हारा परमेश्वर बना रहूंगा, और तुम मेरी प्रजा बने रहोगे। यदि तुम मेरी ना सुनोगे और इन सब आज्ञाओं को ना मानोगे, तो मैं तुम्हारे बल का घमंड तोड़ दूंगा और तुम्हारा बल अकारत गनवाया जाएगा। उत्पत्ति। तब इब्राहिम अपनी पत्नी और अपनी सारी संपत्ति लेकर लूत को भी संग लिए हुए मिस्र को छोड़कर कनान के दक्षिण देश में आया। इब्राहिम भेड़ बकरी गाय बैल और सोने रुपए का बड़ा धनी था। फिर वो दक्षिण देश से चलकर बैतेल के पास उसी स्थान को पहुंचा जहां उसका तंबू पहले पड़ा था, जो बैतेल और ई के बीच में है। ये स्थान उस वेदी का है जिसे उसने पहले बनाया था, और वहां इब्राहिम ने फिर यहोवा से प्रार्थना की, और लूत के पास भी, जो इब्राहिम के साथ चलता फिरता था, भेड़ बकरी गाय बैल और तंबू थे। सो उस देश में उन दोनों की समई ना हो सकी कि वो इकट्ठे रहें, क्योंकि उनके पास बहुत धन था और इसलिए वो इकट्ठे ना चल सके। सो इब्राहिम और लूत की भेड़ बकरी گائے بیل کے چرواہوں کے بیچ میں جھگڑا ہوا، اور اس سمے کنعانی اور فرضی لوگ اس دیش میں رہتے تھے۔ تب ابراہم لوط سے کہنے لگا، میرے اور تیرے بیچ اور میرے اور تیرے چرواہوں کے بیچ میں جھگڑا نہ ہونے پائے، کیونکہ ہم لوگ بھائی بندھو ہیں۔ کیا سارا دیش تیرے سامنے نہیں؟ سو مجھ سے الگ ہو، یدی تو بائیں اور جائے تو میں داہنی اور جاؤں گا، اور یدی تو داہنی اور جائے تو میں بائیں اور جاؤں گا۔ تب لوط نے آنکھ اٹھا کر یردن کے پاس والی ساری ترائی کو دیکھا کہ وہ سب سنچی ہوئی ہے۔ جب تک یہوہ نے سدوم اور عمورہ کو ناشنا کیا تھا، تب تک سور کے مارگ تک وہ ترائی یہوہ کی باتیکا اور مصر دیش کے سامان اپجائی ہوئی تھی۔ سو لوط اپنے لیے یردن کی ساری ترائی کو چن کے پورب کی اور چلا، اور وہ ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ ابراہم تو کنعان دیش میں رہا، پر لوط اس ترائی کے نگروں میں رہنے لگا اور اپنا تمبو سدوم کے نکٹ کھڑا کیا۔ سدوم کے لوگ یہوہ کے لیکھے میں بڑے دشت اور پاپی تھے۔ اتپتی۔ وہ دو دوت سدوم کے پاس آئے، تب دوتوں نے لوط سے پھرتی کرائی اور کہا، اپنے پران لے کر بھاگ جا، پیچھے کی اور نہ دیکھنا اور ترائی بھر میں نہ ٹھہرنا، اس پہاڑ پر بھاگ جانا، نہیں تو تم بھی بھسم ہو جاؤ گے۔ تب یہوہ نے اپنی اور سے سدوم اور عمورہ پر آکاش سے گندک اور آگ برسائی۔ بھور کو ابراہم اٹھ کر اس ستھان کو گیا جہاں وہ یہوہ کے سامکھ کھڑا تھا، اور سدوم اور عمورہ اور اس ترائی کے سارے دیش کی اور آنکھ اٹھا کر کیا دیکھا کہ اس دیش میں سے دھڑکتی ہوئی بھٹی کا سا دھواں اٹھ رہا ہے۔ بھجن سناتا۔ جو پرم پردھان کے سائے میں بیٹھا ہے وہ سرو شکتیمان کی چھایا میں ٹھکانا پائے گا۔ میں یہوہ کے وشے کہوں گا کہ وہ میرا شرن ستھان اور گڑھ ہے، وہ میرا پرمیشور ہے، میں اس پر بھروسہ رکھوں گا۔ وہ تو تجھے ہیلے کے جل سے اور مہاماری سے بچائے گا، وہ تجھے اپنے پنکھوں کی آڑ میں لے لے گا اور تو اس کے پیروں کے نیچے شرن پائے گا۔ اس کی سچائی تیرے لیے ڈھال اور جھلم ٹھہرے گی، تو نہ رات کے بھے سے ڈرے گا اور نہ اس تیر سے جو دن کو اڑتا ہے، نہ اس مری سے جو اندھیرے میں پھیلتی ہے، اور نہ اس روگ سے جو دن دوپہری میں اجاڑتا ہے۔ تیرے نکٹ ہزار اور تیری دانی اور دس ہزار گریں گے، پرنتو وہ تیرے پاس نہ آئے گی، پرنتو تو اپنی آنکھوں کی درشتی کرے گا اور دشتوں کے انت کو دیکھے گا۔ ہے یہوہ، تو میرا شرن ستھان ٹھہرا ہے، تو نے جو پرم پردان کو اپنا دھام مان لیا ہے، اس لیے کوئی وپتی تجھ پر نہ پڑے گی، نہ کوئی دکھ تیرے ڈیرے کے نکٹ آئے گا، کیونکہ وہ اپنے دوتوں کو تیرے نمت آگیا دے گا کہ جہاں کہیں تو جائے وہ تیری رکشا کریں۔ وہ تجھ کو ہاتھوں ہاتھ اٹھا لیں گے، ایسا نہ ہو کہ تیرے پاؤں پر پتھر سے ٹھیس لگے۔ تو سنے اور ناک کو کچلے گا، تو جوان سنے اور اجگر کو لتاڑے گا۔ اس نے جو مجھ سے سنے کیا ہے، اس لیے میں اس کو چھڑاؤں گا، میں اس کو اونچے ستھان پر رکھوں گا، کیونکہ اس نے میرے نام کو جان لیا ہے۔ جب وہ مجھ کو پکارے تب میں اس کی سنوں گا، سنکٹ میں میں اس کے سنگ رہوں گا، اور میں اس کو بچا کر اس کی مہیما بڑھاؤں گا۔ میں اس کو دیرگھائیوں سے ترپت کروں گا اور اپنے کیے ہوئے ادھار کا درشن دوں گا۔ اب میں میری بیکر ریڈی دوارا کرسچن سائنس کی کتاب وگیان اور سوستھ شاستروں کی کنجی کے ساتھ کے سہا سمبندھی انش پڑھوں گا۔ وگیان اور سوستھ۔ ایشور سے الگ کوئی شکتی نہیں ہے، سرویاپی کے پاس سرو شکتی ہے، اور کسی انے شکتی کو سویکار کرنا بھگوان کو بے عزت کرنا ہے۔ آتما کے تین مہان ستے، سرو شکتیمان، سرویاپی، سروگیے، سبھی شکتی رکھنے، سبھی ستھان رکھنے اور سبھی وگیان کی ستھاپنا کرنے والا آتما ہمیشہ اس دھارنا کا ویرودابھاس کرتا ہے کہ سامگری واستوک ہو سکتی ہے۔ یہ شاشوت ستیہ ایشور کی رچنا کی اجول واستوکتا کے روپ میں پرچالت استتو کو پرکٹ کرتے ہیں۔ جس میں انہوں نے کچھ بھی بنایا ہے وہ ان کے اچھے گیان سے سپشٹ ہے۔ اس پرکار یہ تھا کہ میں نے دیکھا جیسا کہ پہلے کبھی نہیں تھا، بھیانک اسطیہ جسے برائی کہا جاتا ہے، پرمیشور کی سمتا نے ایک اور شاندار پرستاؤ کو پرکاش ملایا، منوشے کی پورنتا اور پرتھوی پر سورگ کے راجیہ کی ستھاپنا۔ سرو شکتیمان آتما کی شکتی اپنی شکتی کو پدھارت या मानवीय इच्छा के साथ साझा नहीं करती है। अधिक आत्मा अच्छाई अनंत भगवान और उनके विचार सभी में है, बुराई एक झूठ है। जैसा कि क्रिश्चियन साइंस में नाम दिया गया है, पशु चंबकतिव या सामोहन त्रुटि या नश्वर मन के लिए विशेषित शब्द है। ये गलत धारणा है कि मन पदार्थ में है और ये बुराई और भलाई दोनों है। ये बुराई उतनी ही वास्तविक और अधिक शक्तिशाली है जितनी अच्छाई है। इस विश्वास में सत्य का एक भी गुण नहीं है। ये या तो अज्ञानी है या दुर्भावनापूर्ण है। सामोहन का दुर्भावनापूर्ण रूप नैतिक मूर्खता में परिणत होता है। अमर मन के सत्य मनुष्य को बनाए रखते हैं और वो नश्वर मन की दंता कथाओं का सत्यानाश करते हैं, जिनके चमकीले और भड़कीले दावे मूर्खता पोतंगे की तरह अपने स्वयं के पंख जलाते हैं और धूल में गिर जाते हैं। क्रिश्चियन साइंस में मनुष्य कोई नुकसान नहीं कर सकता, क्योंकि वैज्ञानिक विचार सच्चे विचार हैं जो भगवान से मनुष्य तक गुजर रहे हैं। पशु चंबकतिव के पास कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, क्योंकि भगवान सभी को नियंत्रित करता है, जो वास्तविक सामंजस्यपूर्ण और शाश्वत है, और उनकी शक्ति ना तो पशुओं की है और ना मानव की। मानव जाति को सीखना चाहिए कि बुराई शक्ति नहीं है, इसकी तथाकथित निरंकुशता है, लेकिन ये कुछ भी नहीं है। क्रिश्चियन साइंस बुराई के साम्राज्य को नष्ट करती है और पूर्व में परिवारों में और इसी तरह सामुदाय में स्नेह और सदाचार को बढ़ावा देती है। प्रेरित पौलुस बुराई के अवतार को इस दुनिया के देवता के रूप में सुंदरभद्ध करता है और आगे इसे बेईमानी और चालाकी के रूप में परिभाषित करता है। पाप असुरियों का चंद्रमा देवता था। बुराई एक इनकार है, क्योंकि यह सच्चाई की अनुपस्थिति है। ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये किसी चीज की अनुपस्थिति है। ये असत्य है, क्योंकि ये ईश्वर की अनुपस्थिति सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी का संरक्षण करता है। प्रत्येक नश्वर को यह सीखना चाहिए कि बुराई में ना तो शक्ति है और ना वास्तविकता। बुराई संभव है, वो कहता है, मैं एक वास्तविक अकाई हूं और मैं अच्छाई पर काबू पा रहा हूं। इस झूठ को सभी ढंगों की बुराई को मिटा देना चाहिए। बुराई एकमात्र शक्ति खुद को नष्ट करना है। ये कभी भी एक छोटी सी अच्छाई को नष्ट नहीं कर सकता है। अच्छाई को नष्ट करने के लिए बुराई का हर प्रयास एक विफलता है और केवल बुराई करने वाले को हमेशा के लिए दंडित करने के लिए सहायता करता है। मूर्तापूर्ण भ्रमों से तरसित संसार शिशुअवस्था के पालने में सो रहा है, घंटों सपने देख रहा है। भावतिक भावना अस्तित्व के तत्वों को प्रकट नहीं करती है, लेकिन आध्यात्मिक भावना मानव चेतना को शाश्वत सत्य में ले जाती है। मानवता धीरे धीरे पाप की भावना से आध्यात्मिक समझ में आगे बढ़ती है। सब कुछ ठीक से सीखने की इच्छा मसीही जगत को जंजीरों से बांधती है। प्रेम अंत में सद्भाव के समय को चिन्हित करेगा और आध्यात्मिकता का पालन करेगा, क्योंकि प्रेम आत्मा है। इससे पहले कि त्रुटिपूर्ण रूप से नष्ट हो जाए, सामान्य सामग्री की दिन इच्छरिया में रुकावटें आएंगी। पृथ्वी निर्स और उजाड़ हो जाएगी, लेकिन गर्मी और सर्दी, बीज और फसल, हालांकि बदले हुए रूपों में, अंत तक जारी रहेगी, जब तक कि सभी चीज़ों का अंतम अध्यात्मिकरण नहीं हो जाता। सबसे गहरा समय सुबह से पहले होता है। ये भावतिक दुनिया अब भी परस्पर विरोधी शक्तियों के लिए अखाड़ा बन रही है। एक तरफ कला और निराशा होगी, दूसरी तरफ साइंस और शांति होगी। भावतिक विश्वासों का टूटना अकाल और महामारी, चाहत और शोक, पाप, बीमारी और मृत्यु के रूप में प्रतीत हो सकते हैं, जो तब तक नई चुरानों को मानते हैं जब तक उनको कुछ और दिखाई नहीं देता। ये गड़बड़ी त्रुटि के अंत तक जारी रहेगी, जब सभी कला को आध्यात्मिक सत्य में निगल लिया जाएगा। नश्वर त्रुटि एक नैतिक निस्यानिक अकरण में गायब हो जाएगी। ये मानसिक किनोन शुरू हो गया है और जब तक विश्वास उपज की सभी त्रुटियों को समझाने तक जारी रहेगा। विश्वास परिवर्तनशील है, लेकिन आध्यात्मिक समझ अपरिवर्तनीय है। जैसे जैसे ये अंतर्ग्रहण समाप्त आता जाता है, वो दिव्य विज्ञान के अनुसार अपने पाठ्यक्रम को आकार देता जाएगा। जैसे जैसे भौतिक ज्ञान कम होता जाता है और आध्यात्मिक समझ बढ़ती है, वास्तविक वास्तुओं को भौतिक की बजाय मानसिक रूप से पकड़ा जाएगा। इस अंतम संघर्ष के दौरान दुष्ट सोच वाले ऐसे साधनों को खोजने का प्रयास करेंगे जिनके द्वारा अधिक बुराई को पूरा किया जा सके। लेकिन जो लोग क्रिश्चियन साइंस को समझते हैं वो अपराध को रोकेंगे, वो त्रुटि की अस्वीकृति में सहायता करेंगे, वो कानून और व्यवस्था बनाए रखेंगे और आनंद पूर्वक परिपूर्णता की निश्चितता का इंतजार करेंगे। वास्तव में अधिक नैतिक त्रुटि सच्चाई का अनुकरण करती है और तथाकथित मामला अपने सार नश्वर मन जैसा दिखता है, उतना ही नपुंसक त्रुटि विश्वास के रूप में बन जाता है। मानव की मान्यता के अनुसार बिजली भयंकर है और बिजली का प्रवाह तेज है। फिर क्रिश्चियन साइंस में एक की उड़ान और दूसरे का झटका हानि रहित हो जाएगा। जितना विनाशकारी पदार्थ बनेगा उतनी ही उसकी निष्पक्षता दिखाई देगी, जब तक कि वो भ्रम में अपने नश्वर क्षेत्र तक नहीं पहुंचता और हमेशा के लिए गायब नहीं हो जाता। निकटिश विश्वास एक ऐसी सच्चाई से गुजरता है जो बिना सीमा के गुजरती है, जहाँ परमात्मा प्रेम से नष्ट हो जाता है, ये भ्रम होना भी बंद कर देता है, ये विनाश के लिए बनाने वाला दुस्साहस है। ये विश्वास जितना अधिक भावतिक है उतनी ही स्पष्ट इसकी त्रुटि है। जब तक कि दिव्य आत्मा अपने क्षेत्र में सर्वोच्च नहीं है, सभी पदार्थों पर हावी है और मनुष्य आत्मा उसके मूल होने की समानता में पाया जाता है। व्यापिक तत्वों में खुद के खिलाफ सबसे अधिक गलतियां हैं, क्योंकि वो कोर के तहत त्रुटि लाते हैं। सत्य बोलने के लिए साहस चाहिए, क्योंकि जितना अधिक सत्य अपनी आवाज उठाएगा त्रुटि उतनी ही जोर से चलाएगी, जब तक कि इसकी प्रारंभिक ध्वनि हमेशा के लिए गुमनामी में चुप नहीं हो जाती। ईश्वर तत्व सर्वव्यापी और सर्वशक्तिमान है। ईश्वर हर जगह है और उसके बिना कुछ भी मौजूद नहीं है या उसकी कोई शक्ति नहीं है। अब मैं मेरी बेकर रेडी द्वारा चर्च मैनुअल में दिए गए 3 दैनिक कर्तव्यों को पढ़ूंगा। दैनिक प्रार्थना। प्रत्येक दिन प्रार्थना करने के लिए इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का कर्तव्य होगा, तुम्हारा राज्य आए, ईश्वरी सत्य जीवन और प्रेम के शासन को मुझ में स्थापित कर और मुझ पर शासन कर, और तेरा वचन सभी मनुष्यों के स्नेह को समर्थ कर सकता है और उन पर शासन कर। आदेशों और कर्तव्यों के लिए एक नियम, ना तो दुश्मनी और ना व्यक्तिगत लगाव मदर चर्च के सदस्यों के आदेशों और कर्तव्यों पर लागू करना चाहिए। विज्ञान में दिव्य प्रेम ही मनुष्य को नियंत्रित करता है और एक क्रिश्चियन विज्ञानी प्यार की मीठी सुविधाओं को दर्शाता है। प्यार में डांटने पर, सच्चा भाईचारा, पारोपकार और क्षमा में। इस चर्च के सदस्यों को प्रतिदिन ध्यान रखना चाहिए और सभी बुराई दूर करने, भविष्यवाणी, न्याय करने, निंदा करने, परमाश देने, प्रभावित करने या गलत तरीके से प्रभावित होने से बचने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। कर्तव्य के प्रति सतर्कता। इस चर्च के प्रत्येक सदस्य का यह कर्तव्य होगा कि वो प्रतिदिन आक्रामक मानसिक सुझाव से बचाव करे और भूलकर भी ईश्वर, नेता और मानव जाति के प्रति अपने कर्तव्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। उनके कामों से उन्हें आंका जाएगा और वो उचित या निंदनीय होगा।